நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் தோ ஜயமுதீரயேத். வியாசம் வசிஷ்டநப்தாரம் சக்தேஹ பௌத்ரமகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாபம் தபோநிதி. மார்க்கண்டே ஜி ஜித்னே மன்வந்தர் அப் தக் ஹோ ரே உன் சப் கி கதா சுனாதே ஹே. पांच मनवंतरों में जो खास मनु मनवंतर कहलाता है, एक मनु का शासन काल और मनु कहलाता है उसका स्वामी, समय का स्वामी. तो पांच तो बता दिए. मार्कंडेय जी कहते हैं कि अब आप मेरे से छठे मनवंतर की कथा सुनो. छठा मनवंतर है वो चाक्षुष मनु के नाम से है. वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष हुआ. अब इसके विषय में आप विस्तार से सुनो, बहुत ध्यान देकर सुनने की. राजर्षि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया. एक बात तो कह दी कि मनु का बेटा था ये चाक्षुष. यहां एक विषय को समाप्त कर अब थोड़ा दूसरा विषय ले रहे हैं. राजर्षि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बहुत विद्वान, पवित्र और यहां तक कि पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला था और उसमें प्रकट करने की सामर्थ्य भी थी. उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती, स्नेहवश छाती से चिपका लेती, क्योंकि माताओं का यह स्वभाव होता है. किंतु इस पुत्र को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, अतः वह माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा. माता ने देखा यूं ही बच्चा हंसता होगा, पर जब भी गोद में ले तब हंसे ही हंसे. तब माता को कुछ डर लगा. माता ने कहा बेटा ही क्या है, तो हंसता ही रहता है. मैं तो डर गई, तेरे मुख पर ऐसा हास्य कैसे है? क्या तुम्हें इस छोटी सी अवस्था में बोध हो गया, जबकि तुम पैरों से भी नहीं चल पाते हो? क्या तुम कोई बहुत बड़ा शुभ काम देख रहे हो? पुत्र बोला मां देखो, इधर मेरी अंगुली की तरफ देखो, ये आपको जो बिल्ली दिखाई देती है ना. हाँ है, घरों में बिल्ली तो रहती है, आती है जाती है. ये बिल्ली मुझे खाना चाहती है. अच्छा, और इधर देखो एक जात हारिणी नाम की राक्षसी अदृश्य होकर यहां बैठी हुई है, वो मुझे हड़पने की तैयारी में. वो तो मुझे हड़पना चाहती, ये मुझे खाना चाहती, और तुम बड़े प्रेम से मेरी ओर देखती हो, बार बार बुलाती हो, छाती से चिपकाती हो, तुम्हारे शरीर में रोमांच होता है, वात्सल्य स्नेह के कारण से तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं. मुझे ये सब संसार की लीला देख करके बड़ी हंसी आ गई. कोई मुझे खाना चाहता है, कोई मुझे हरना चाहता है, हड़पना चाहता है, कोई मेरे से प्यार करना चाहता है, ये सब स्वार्थ ही स्वार्थ है और कुछ नहीं। बिल्ली मुझे खा करके अपने पेट भरने का स्वार्थ देख रही है, और ये जात हरिणी ना, ये राक्षसी है, ये राक्षसी मुझे हरण करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, और तुम देखती हो कि मेरा बेटा बड़ा होगा फिर ये मुझसे प्रेम करेगा, मेरा भरण पोषण करेगा, तो तुम भी अपना स्वार्थ चाहती हो। माने संसार में जहां दृष्टि डालो वहां स्वार्थ के अलावा कोई संबंध नहीं है। माता ने कहा, बेटा मेरे मन में तो कोई तुम्हारे लिए स्वार्थ नहीं है, क्योंकि तुम इतने छोटे हो, इस अवस्था में तुम मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध कर पाओगे, मैं तुमसे कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाऊंगी, मेरे अंदर तो अतिशय प्रेम है, इस प्रेम के कारण से मैं तुमको छाती से लगाती हूं, इससे यदि तुमको प्रसन्नता नहीं होती है तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया, और जब तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लो तुमसे प्राप्त होने वाला जो मेरा स्वार्थ था उसका भी मैंने परित्याग कर दिया। ऐसा कहकर के वो मां बालक को वही छोड़ करके सूतिका गृह से बाहर निकल गई। इधर वो राक्षसी जात हारिणी थी, उसने उस शुद्ध आत्मा बालक को हड़प लिया, बिल्ली के हाथ आने नहीं दिया, और उसको वहां से अदृश्य भाव से बहुत दूर ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में ले जाकर सुला दिया। विक्रांत नाम का कोई राजा था, उसके घर में सुला दिया। और उस रानी के एक बेटा हुआ था, उस बेटे को उसने उठा करके दूसरे के घर में रख दिया, और जब वो उस दूसरे के घर में ले जाकर उसको रखा तो उसके भी कोई बालक हुआ था तो उसको उठा करके खा गई। क्योंकि इस राक्षसी में तीसरे घर के बालक को खाने की शक्ति थी, पहले जिसका हड़प करती उसको नहीं खाती, उसकी जगह दूसरे का हड़प करती तो वो भी नहीं खाती, तीसरी जगह का बच्चा खाती थी। ये बालकों के चुराने का अदला बदली का काम ये प्रतिदिन किया करती थी। इधर राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार किया। उसने देखा मेरा ही बेटा है, बड़ी प्रसन्नता से उसका नामकरण किया, पूरी विधियां की और उसका नाम आनंद रखा। ये वही है, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसके उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा कि वत्स, पहले अपनी मां के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो, मां से आशीर्वाद लो, संसार में मां से बड़ा कोई नहीं होता, मां को प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर के बालक जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूं, जन्म देने वाली माता को या पालन करने वाली को, मैं कुछ आपकी बात समझ नहीं सका, किसको प्रणाम करूं। गुरुदेव मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्म पत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, किंतु एक जातहारिणी राक्षसी ने मेरा हरण कर लिया और ला करके यहां हेमिनी नाम की जो ये राजा की पत्नी है इसके पास छोड़ दिया और इसके पुत्र को उठा लिया और उठा करके एक ब्राह्मण के घर में उसको रख दिया और उस ब्राह्मण के पुत्र को हड़प करके वो खा गई। अब राजा ने रानी हेमिनी का जो वास्तविक पुत्र है उसके लिए तो वहां संस्कार हो रहा है ब्राह्मणोचित संस्कार और वो वहां संस्कारों से पल रहा है, आप मेरा इसका बेटा मानकर मेरा संस्कार करा रहे हैं, अब मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, अब बताओ किस माता के पास जाकर प्रणाम करूं। गुरु बोले बेटा इतना तो हमें पता ही नहीं था, ये तो बड़ा संकट आ गया, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है, मुंह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। आनंद ने कहा गुरुदेव भ्रमित मत होइए, इस भ्रम जाल से निकलिए, संसार की ऐसी व्यवस्था है इसमें मोह का लिए कोई अवसर नहीं है, पर जान करके मोह का जाल बना करके और फिर उसमें फंस जाए उसका तो कौन क्या करे, संसार के अंदर कहीं मोह करने की गुंजाइश नहीं है। सोचिए आप कौन किसका बेटा कौन किसका भाई, ये जीव जब एक शरीर धारण करता है तभी तो उसके माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र से संबंध होता है, परंतु जब वो मरता है तो मरते ही एकदम उसके सारे संबंध टूट जाते हैं। यहां भी देखो जिसका जन्म हुआ वो कहीं और जगह संबंधी बना लिया, मेरा और जगह संबंध हुआ तो यहां आपने इनके साथ संबंध जोड़ दिया, जन्म के साथ भाई बंधु मां बाप सब संबंध जुड़ जाते हैं और देह का अंत होने पर सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूं गुरुदेव संसार में रहने वाले जीव का न कोई भाई है न कोई परिवार है न कोई कुटुंब है, उसका अपना करके कोई नहीं है। और आप विचार करो गुरुदेव कौन किसके साथ सदाई भाईपने का व्यवहार करता है क्या, मैंने तो इसी जन्म में दो माताएं प्राप्त की दो पिता प्राप्त किए, फिर यदि दूसरी देह मैं धारण करूंगा दूसरा देह धारण करूंगा तो वो मेरे मां बाप हो जाएंगे, कितने एक मां बाप की संख्या करवाओगे इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए गुरुदेव अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस परिवार के संबंध में रहने लायक नहीं हूं, अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को जो उसका नाम वहां चैत्र रख रखा है वहां बुला लीजिए, कि तुम तो सब जानते हो तभी तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब इस आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और जब उनको पता चला कि ये कहीं और जगह से लाया हुआ है तब उन्होंने इससे अपनी ममता हटा दी और उसको कहा कि बेटा तुम यदि तपस्या करने जाते हो तो बड़े प्रेम से चले जाओ, तो वो तपस्या करने की अनुमति दे दी। उधर विशाल नामक ग्राम से उस ब्राह्मण के पास से अपने पुत्र को बुला लिया और उसका पालन पोषण किया, वो राज्य करने के योग्य हो गया और उस ब्राह्मण का भी उन्होंने भली भांति सम्मान किया। कि मेरा पुत्र आने के बाद आपका पुत्र वो ले गई, आपका मैं भरण पोषण करूंगा, पालन किया। इधर आनंद तपस्या में लगे हुए थे, उन्हें तपस्या में देख करके ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स बताओ तो सही, इतना कठोर तप करते हो, माँ का प्यार दुलार, भाई बंधुओं की स्नेह भरी गोद, पिता का प्रेम, इन सब को ठुकरा करके इस जंगल में तुम इतना घोर तप किस कारण से कर रहे हो? आनंद ने कहा, भगवान मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करता हूं, मेरे बंधन के जितने कर्म हैं वो तपस्याओं से नष्ट हो जाए, यही मेरी तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है, अर्थात जिसके कर्मों का संचय खत्म हो जाता है, फिर वो क्यों किसका कहां जाकर जन्म लेगा, वह तो मुक्त हो जाएगा। संसार में बार बार जन्मना उसका होता है जिसका कर्म भोग इकट्ठा है, तो उसको वो भोगता है और फिर जो है नए कर्म बनाता है, तो वही संसार में दौड़ता है। तो तुम्हारे पास अब कर्मों का कोई भोग नहीं रहा, हां तुम्हारे पास अभी कर्मों का कुछ संचय पड़ा है, इसलिए अब मेरा सब कर्म भोग नष्ट हो जाए ये तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम तो सत्व के अधिकारी हो, सत्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पाओगे? देखो तुम अभी छठे मनु बनो और अपने अधिकार का पालन कर लो, तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे, इसलिए उठो और मनु बनो। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करके वहां से चल दिए। मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए तो ब्रह्मा जी उन्हें तपस्या से हटाते समय बहुत प्यार भरे नेत्रों से, चक्षुषों से देख रहे थे, तब उसका नाम चाक्षुष मनु हो गया। उनका विवाह हुआ और उनके बड़े श्रेष्ठ पुत्र हुए। उनके यहां 5 देवता गण थे, 8-8 देवताओं का सन्निवेश था, सब देवता यज्ञ की सामग्री स्वीकार करते थे। मनोजव नाम का इंद्र उस समय था और 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया और 7 ऋषि थे, इत्यादि इत्यादि चाक्षुष मनु की अपनी अपना समय उन्होंने पूरा किया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वैवस्वत मनु की कथा सुनाता हूं। अब ये वैवस्वत मनु की कथा कल सुनाएं। क्या तारीख 8